मेरे प्यारे जुझारू साथियों नमस्कार। मित्रों, आज 18 मई 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले कि मैं आज न्यू एनालिसिस पर बात करूं, मैं एक छोटी सी आप लोगों को सूचना देना चाहूंगा और वो सूचना ये कि अगर आपने कल का मेरा डेली ऑडियो सुना हो तो उसमें मैंने न्यूज़पेपर्स के बारे में कुछ बातें आपसे की थी कि न्यूज़पेपर कौन से पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि मेरे पास लगातार स्टूडेंट्स के इस तरह की जिज्ञासा से भरे हुए मेल आते थे और नो डाउट कि उनकी जिज्ञासाएं बिल्कुल जायज थी और इनका उत्तर दिया जाना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक हम भ्रम में रहते हैं, द्वंद में रहते हैं, तब तक रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं देता और जब तक रास्ता स्पष्ट दिखाई न दे फिर चलने का काम तो होता है लेकिन पहुंचने का काम नहीं हो पाता, क्योंकि बिना रास्ते के फिर तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं और पता लगा कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद हम उसी रास्ते पर उसी बिंदु पर फिर से पहुंच गए जिस बिंदु से हमने चलने की शुरुआत की थी। तो मित्रों, फिर इस बात को ध्यान में रख करके कल YouTube पर एक फिफ्थ पिलर्स के रूप में एकेडमी फॉर एक्सीलेंस की तरफ से मेरा एक प्रोग्राम डाला गया है फिफ्थ पिलर, जिसमें न्यूज़पेपर के बारे में बात की गई है और काफी विस्तार से बात की गई है न्यूज़पेपर के बारे में। तो यह एक सूचना आप सबके लिए है कि जो न्यूज़पेपर्स कौन से पढ़ें कि न पढ़ें और अगर पढ़ें तो फिर कैसे पढ़ें, जो अपने इस तरह के प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं वो YouTube पर जाकर afis.com को जब वो क्लिक करेंगे तो उन्हें वह प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। तो मित्रों, यह एक छोटी सी सूचना थी। अब मैं आता हूं दोस्तों न्यूज एनालिसिस पर। न्यूज एनालिसिस में मैं एक दो बातों पर सबसे ज्यादा दो तीन सूचनात्मक चर्चा करने के बाद मैं आज कुछ अलग तरीके से आपसे बात करने की सोच रहा हूं। मित्रों, पहले तो मैं आपको सूचनात्मक जो सूचना परक जो खबरें थी वो बता दूं जो कंटेंट के रूप में आपके काम आएंगी। एक आप पिछले साल कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जब से छत्तीसगढ़ के नक्सली एरिया में एक बहुत ही घातक हमला नक्सलियों ने किया था और हमारे सीआरपीएफ के 50 करीब 25-26 जवान मारे गए थे, उसके बाद सरकार ने काफी हार्ड स्टेप उठाए हैं, एक रणनीति भी तैयार की गई है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में मिले थे जिसकी अध्यक्षता हमारे गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी ने की थी, आपको ध्यान होगा। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि नक्सलियों पर थोड़ा दबाव बढ़ा है और समर्पण की घटनाएं आ रही हैं। तो समर्पण तो देखिए तभी वो करते हैं जब उन पर दबाव बढ़ने लगता है और उनको ये डर लगता है कि नहीं, मरने से तो ज्यादा अच्छा है कि भाई आप समर्पण कर दो, सरकार के अंडर में चले जाओ, भले ही वो जेल में डाल दे लेकिन जिंदगी तो बची रहेगी। तो ये एक खबर आपको पढ़ने को मिल रही होगी। यहां मैं आपको थोड़ी सी याद दिलाना चाहूंगा फ्रेंड्स कि हमारे जो भिंड मुरैना, मध्य प्रदेश का जो भिंड मुरैना वाला जो एरिया है, ग्वालियर से सटा हुआ उधर का एरिया जिसको चंबल घाटी कहते हैं ना, उधर घाटियां हैं, अगर कभी आप उस रास्ते से गुजरे हो ट्रेन से तो आप देखेंगे कि वहां बहुत खाइयां सी बनी हुई हैं, जमीन पर खाइयां जो बनी होती हैं वो डाकुओं के छुपने के लिए वो बड़े बड़ी मुफीद जगह होती है, बहुत ही आदर्श जगह होती है। और ऐसे स्थलों पर सच पूछे तो पुलिस आर्मी भी कुछ नहीं कर सकती कि उन डाकुओं को खोजे कैसे, या पुलिस ऊपर से देख रही है डाकू खंदकों में छिपे हुए हैं, उनको तो पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं लेकिन पुलिस वालों को डाकू दिखाई नहीं दे रहे। तो ये मध्य प्रदेश की एक बहुत बहुत भयानक समस्या हो गई थी, मध्य प्रदेश और उसे सटा हुआ उधर यूपी का भी इलाका है। तो बाद में एक समर्पण हुआ था शायद 1972-73 या 74 की बात है, इसी के आसपास की बात है, जयप्रकाश नारायण जी उसके नायक थे, मतलब डाकू बहुत बड़ी संख्या में डाकुओं ने समर्पण किया था उस एरिया में। डाकुओं का बड़ा जबरदस्त आतंक था और इतना जबरदस्त आतंक था कि डाकुओं पर आधारित फिल्में तक बन चुकी थी उस समय, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में आज भी वो अवेलेबल है, इतना ज्यादा आतंक था। फिर इसके बाद डाकुओं की समस्या लगभग कम होते होते अब खत्म सी ही हो गई है। तो समर्पण की ताकत तो है, मैं रेफरेंस के रूप में आपको बता रहा हूं कि अगर नक्सलियों का समर्पण का यह दौर जारी रहा तो यकीन हम कर सकते हैं कि बहुत जल्दी शायद हमें नक्सली समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। मित्र, दो तीन छोटी छोटी खबरें और भी हैं। एक तो जो मातृत्व लाभ योजना है महिलाओं के लिए, जो गर्भवती प्रेग्नेंट जो महिलाएं होंगी उनको छुट्टी में भी वेतन का लाभ मिलना चाहिए, इस योजना को पूरे देश में लागू किया जा रहा है। ध्यान आपको रखना है कि केवल पहले बच्चे तक ही यह योजना सीमित है, क्योंकि महिला विमेन एम्पावरमेंट आपके सिलेबस में है, तो ये कंटेंट आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार इसको लागू कर रही है। और बहुत से ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं और भारतीय कंपनियां भी हैं, जिन्होंने अपने यहां यह लागू कर दिया है कि 6 महीने या 8 महीने तक वह जब कोई भी महिला उनके यहां महिला काम करने वाली महिला कर्मचारी जब माता बनेगी तो उनको घर उनको छुट्टी दी जाएगी और उस छुट्टी का वेतन उनको दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड, जब आप बड़े व्यावसायिक दिमाग से सोचेंगे तो दिमाग में ये बात आती है कि क्यों ऐसा होना चाहिए, जब वो काम ही नहीं कर रहे हैं तो क्यों पैसा दिया जाना चाहिए, इससे तो कंपनी की लागत बढ़ जाएगी, वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, कंपनी नुकसान में चली जाएगी, दूसरों का इससे मोटिवेशन खराब होगा। मतलब दूसरों का क्या, पुरुषों का ही खराब होगा, महिलाओं का तो होना नहीं, हो तो बल्कि एम्पावर्ड होंगी वो, सच पूछे तो इससे उत्साहित होंगी। ये हमारे सोचने का एक तरीका है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। देखिए आज अगर हम हैं पुरुष के रूप में कुछ भी कर रहे हैं तो हमें किसी ने जन्म दिया है ना, ऐसे तो हम नहीं टपक गए हैं, हमें जन्म दिया है। तो वो जिसने हमें जन्म दिया है और अगर वो सर्विस में है तो क्या हम समाज की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो जिस बच्चे ने जन्म लिया है, जो बच्चा है, जो आगे भविष्य का देश का नागरिक बनने वाला है, उसकी परवरिश अच्छे से हो? क्या उसकी परवरिश करने की जिम्मेदारी सिर्फ अकेली मां पर ही है? ज्यादा से ज्यादा क्या सिर्फ मां और बाप पर ही है? क्या उनके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उन तक ही ये जिम्मेदारी सीमित है? क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या उस संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं है जिस संस्थान में वह मां काम कर रही है? तो ये एक मानवीय दृष्टिकोण है, और सच पूछे तो मानवीय दृष्टिकोण होने के साथ साथ ये एक बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण भी है। सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण नहीं है, व्यवहार में भी ऐसा होना चाहिए। तो अब चूंकि पूरी की पूरी दुनिया में एक वेलफेयर ओरिएंटेड सोच बड़ी जबरदस्त रूप से चलनी शुरू हो गई है, तो उसी का यह एक रिफ्लेक्शन है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो यह तथ्य आपको मालूम होनी चाहिए। एक आपने और भी खबर सुनी दोस्तों की, जो सरकारी आवास खाली करने के मामले में अब कैबिनेट ने डिसीजन, सरकार एक कानून बदलने जा रही है। अक्सर यह देखा गया है बड़े अफसर हैं उनको सरकारी मकान मिले हुए हैं, किसी भी अफसर को अगर सरकारी मकान मिला हुआ है, मंत्री हैं, राजनेता हैं, उनको शहरों में मकान मिले हुए हैं, राजधानियों में मकान मिले हुए हैं, अब वो अफसर नहीं रहे, रिटायर हो गए हैं, अब नेता भी पदों पर नहीं रहे, लेकिन वो मकान नहीं छोड़ते हैं, मकान खाली नहीं करते हैं, और इससे जो नए लोग आते हैं वो बहुत लंबी उनकी प्रतीक्षा हो जाती है। और सच पूछे तो आप इसको जरा व्यावहारिक स्तर पर सोच करके देखिए कि जिन अधिकारियों को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, या जिन हमारे राजनेताओं को लोगों के लिए एक आदर्श पेश करना चाहिए कि लोग उनको फॉलो कर सकें, वही जब इस तरह का काम करते हैं तो सोच कर देखिए कि लोगों में क्या मैसेज जाएगा, फिर लोगों में कैसे नैतिकता का प्रचार प्रसार होगा। उनको तो अपनी तरफ से खाली कर देना चाहिए, 5 दिन पहले खाली कर देना चाहिए। अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि किस तरीके से जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने, ओबामा जी का टर्न खत्म हुआ, वो तुरंत अपने मकान में चले गए। ठीक इसी तरह से आपने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भी की खबर पढ़ी, ब्रेग्जिट के बाद उन्होंने त्यागपत्र दिया, थेरेसा मे न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी और रातों रात ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो अपने मकान पर में चले गए। तो सबके अपने मकान होते हैं, लेकिन वो जाते नहीं है, सरकारी मकान है, बड़ा मकान है, बहुत ही अच्छे लोकेशन में है, उसको हथियाए रहते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा आदर्श सरकार ने प्रस्तुत किया है। आपका जो फोर्थ पेपर है, नैतिकता वाला जो पेपर है, जनरल स्टडीज का मेंस, उसमें ये उदाहरण काम आ सकता है, दोनों उदाहरण, मातृत्व वाला भी और सरकारी आवास वाला भी। दोस्तों अभी नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं और अखबारों में इसके बारे में आप लोगों को लेख वगैरह पढ़ने को मिलते होंगे, डिस्कशंस भी हो रहे हैं, आकाशवाणी पर भी इस पर बहस हो रही है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए दीजिएगा। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आंकड़े आपको मिले उसमें, तो अभी अक्टूबर में जब सिविल सर्विस के मेन्स होंगे तो उसमें वो आंकड़े उपयोगी हो सकते हैं। मैं जानबूझकर उस पर बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मतलब उपलब्धियों की बात या इसकी समीक्षा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि वो डेली ऑडियो लेक्चर में उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, और चूंकि उसमें कोई एनालिसिस की बात भी नहीं है, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही जानने हैं, तो इन्फॉर्मेशन आपको वहां अवेलेबल है। एक तथ्य और है फ्रेंड्स, और वो कि सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम है कि तीन तलाक के मामले और निकाह हलाला इन सबको लेकर के अभी सुनवाई हो रही है। उसमें कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में सतर्क किया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, देखिए बहस तो लंबी लंबी चल रही है, आपको मेन चीजों पर फोकस करना है जो थोड़ी सी नई है, चौंकाने वाली है, बड़ी तार्किक है। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि जब निकाह होता है और उसमें तीन तलाक, जब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो जो तीन तलाक का जो ऑप्शन है वो मुस्लिम महिलाओं को दे दिया जाए और उनसे कहा जाए कि भाई आप तीन तलाक को मानते हैं या नहीं मानते हैं, और उस विकल्प को उनको दे दिया जाए। अगर वो मानते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया जाए, और अगर कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे तो उसको वहां से हटा दिया जाए, तो फिर उनको तीन बार तलाक कहने के आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता। अब इस आइडिया को कुछ लोगों ने वेलकम किया है, है ना। कपिल सिब्बल जी जो पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं, उन्होंने भी इस आइडिया को वेलकम किया कि हाँ एक अच्छा आइडिया है। तो इस तरह की जो नई चीजें मिलती हैं, प्लीज आप उन पर थोड़ा सा ध्यान दें। मित्रों अब मैं आता हूं जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कल की जो खबर है, और सामान्यतः इस तरह की खबरों को जो स्टूडेंट है वो मिस कर देते हैं, इनके पीछे की ताकत को नहीं समझ पाते, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा आपको तवज्जो आज मैं दे रहा हूं। और ये है अभी जो कोयला नीति घोषित की गई है, कल आप लोगों ने दूरदर्शन की न्यूज पर भी देखा और आज के अखबारों में भी उस पर काफी है, रेडियो न्यूज में भी उसे मेंशन किया गया है। और जो कोयला नीति घोषित की गई है उसे नाम दिया गया है शक्ति का, SHAKTI, लेकिन ये जो शक्ति है ये मतलब एनर्जी के रूप में भी शक्ति है। कोयला तो एनर्जी, कोयला से तो एनर्जी बनती है, आपको मालूम ही है, है ना। थर्मल पावर कोयला से तैयार होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पानी से तैयार होता है, परमाणु ऊर्जा के बारे में अब आप जानते ही हैं, सोलर एनर्जी तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, वो सूर्य की रोशनी से, सूर्य की किरणों से बनाया जाता है, इन एनर्जीज के बारे में आप जानते हैं, तो शक्ति भी है। और यहां जो SHAKTI एब्रिविएशन का जो अर्थ है वह है स्कीम हार्नेस एंड एलोकेट कोल ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, स्कीम टू मतलब एक ऐसी योजना हार्नेस एंड एलोकेट जो कोयले की शक्ति का उपयोग करेगी और आवंटन भी करेगी कोल ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, और ये जो कोल का आवंटन करेगी और कोल की शक्ति का जो उपयोग करेगी ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से करेगी, बहुत ही पारदर्शी तरीके से करेगी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म फिर हो जाता है शक्ति। इसे न्यूज में आपने देखा होगा, जो पीयूष गोयल जी हमारे ऊर्जा मंत्री, उन्होंने कहा कि नई कोल आवंटन नीति और कोल लिंकेज पॉलिसी शब्द भी कहा, कोल लिंकेज पॉलिसी। इसका जो मकसद है मित्रों वो ये है कि हमारे यहां जितने भी कोयला पर आधारित परमाणु संयंत्र हैं या उद्योग हैं, किसी भी स्थिति में उनके पास कोयले की कमी न होने पाए, इसको इंश्योर करना है। इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट भी किए जाएंगे वो बहुपक्षीय होंगे, केवल वन टू वन नहीं होंगे, उसमें दूसरे लोग भी शामिल होंगे। अगर कहीं भी कोयले की कमी पड़ रही है तो ताकि उनको तुरंत कोयला उपलब्ध कराया जाए, यानी कि उनके जो संयंत्र हैं वो कभी खाली न रहे, तो ये बहुत व्यावहारिक पॉलिसी है, आपको इस पॉलिसी को थोड़ा सा देखना होगा। इसी के तहत मित्रों जो दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है वो है परमाणु ऊर्जा को लेकर। कल दूरदर्शन पर पीयूष गोयल जी का बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो अपनी बात रख रहे थे वो प्रोग्राम आया भी था। इसके तहत फ्रेंड्स 10 स्वदेशी इकाई लगाई जाएंगी, 10 स्वदेशी इकाई लगाई जाएंगी, उसमें से हर एक की जो कैपेसिटी होगी वो होगी 700 मेगावाट, यानी कि 10 से 700 का गुणा कर दीजिए तो टोटल 7000 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे ये काफी कुछ स्वदेश पर आधारित होंगे, स्वदेशी तकनीक पर आधारित होंगे। और कोयले के बारे में ये इंश्योर करने की कोशिश की जा रही है फ्रेंड्स कि जितने भी हमारे कोल पर आधारित इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, विद्युत प्रोजेक्ट है जिसे हम थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं, तो हमारे जो थर्मल पावर स्टेशन हैं वो अभी ज्यादातर कोयला बाहर से मंगाते हैं। उसका कारण है कि बाहर के कोयले की जो क्वालिटी है वो अच्छी है और थोड़ी सी वो सस्ती भी पड़ती है। अब कोशिश ये होगी कि जो बिजली संयंत्र हैं वो बाहर से कोयला उन्हें मंगाना पड़े और उनकी जितनी भी डिमांड है वो देश में ही पूरा किया जाए। और क्योंकि एक इंश्योर इसलिए भी ये किया जा रहा है कि इस बीच में कोयले का उत्पादन भी बढ़ा है और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि अब जो कोल जो माइन आवंटित किए जाएंगे, कोल खदान जो अब आवंटित किए जा रहे हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से किए जा रहे हैं, ई सिस्टम से किए जा रहे हैं, जिसको आप कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजें हो रही हैं। मित्रों, इन तथ्यों को आपको जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आप पिछले 2013 से लेकर 2016 तक के अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके देखें, मेंस जनरल स्टडीज का थर्ड पेपर जो आपकी इकोनॉमी से संबंधित है, तो आप पाएंगे कि कोयला और बिजली इन दो सेक्टर से हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो साल तक तो सीधे सीधे कोयला से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोल सेक्टर से, और इसके बाद बिजली जो विद्युत सेक्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ आपको यह भी मालूम है कि पेरिस सम्मेलन में भारत ने साइन किया है और अब वो ग्रीन एनर्जी पर बहुत जोर दे रहा है। ग्रीन एनर्जी का मतलब है कि हम कोयले पर आधारित जो हमारे संयंत्र हैं उनको रिप्लेस करेंगे, और आपको मालूम है कि जो ग्रीन एनर्जी का भी जो हमने लक्ष्य रखा है भारत ने 2022 तक 1,75,000 मेगावाट 2022 तक हम ये बिजली उत्पादन करेंगे, सोचकर देखिए। और एक ये बहुत बड़ी संख्या है जिसे पाना उतना आसान काम नहीं है, तो उस दिशा में भी बढ़ाया गया एक कदम आप इसे कह सकते हैं। तो मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज अभी मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैंने चारों साल के प्रश्न निकाल कर अपने सामने रखे हुए थे कि अगर समय बचेगा तो मैं चारों साल में इन इश्यूज पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको पढ़कर सुना सकूं। लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास मैं मानकर चलता हूं कि अनसॉल्व्ड पेपर होंगे ही, और मैं सजेस्ट करूंगा कि जनरल स्टडीज का जो थर्ड पेपर होता है मेंस के, आप चारों साल के 2013 से लेकर के 2016 तक उन्हें उठाकर देखें और उसमें आपको इस टॉपिक पर हर साल एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा। और आपको ऐसा करना भी चाहिए ताकि आपके दिमाग में यह स्पष्ट हो सके कि इस सेक्टर से, इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन के स्वरूप का अंदाजा नहीं होगा मित्रों, तब तक आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ही साइंटिफिक या उस रूप में दिशा नहीं दे सकेंगे जो वाकई में सिविल सर्विस के प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मित्रों, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन मैं बात करने की स्थिति में मित्रों नहीं हूं। इसमें एक क्लिपिंग्स जो इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर बहुत अच्छा लेख है जो हिंदू का है, मित्रों मेरी कोशिश होगी कि वह मैं आपको हिंदी में उपलब्ध करा सकूं, क्योंकि वो बहुत अच्छा लेख है और उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। सिविल सर्विस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन स्टूडेंट जनरल सामान्य तौर पर उसे इग्नोर कर देते हैं। बाकी कुछ और भी आर्टिकल्स हैं फ्रेंड्स, वो आप लोग देख लीजिएगा। अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और आप में से ही कुछ मित्रों के नाम हैं, शुभम वर्मा मेरठ उत्तर प्रदेश से, सोनू कुमार सिवान बिहार से, भगीरथ रेगर भीलवाड़ा राजस्थान से, अंकुर शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से, अमित कुमार सैदपुर उत्तर प्रदेश से और विवेक कुमार मिश्र इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।